हरे कृष्ण। पिछले कुछ रविवारों से दक्ष प्रजापति की कथा श्रीमद् भागवत से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। दक्ष ने किस प्रकार अपमान किया शिव जी का यज्ञ में सबके सामने। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चले गए वहां से। फिर और एक यज्ञ किया जब ब्रह्मा जी ने उसे प्रमुख बना दिया प्रजापतियों का, तो और एक यज्ञ किया, शिव जी को बुलाया नहीं, आमंत्रण नहीं दिया। लेकिन दक्ष की पुत्री जो शिव जी की पत्नी है सती देवी, उन्होंने जाने की इच्छा की, वो गई शिव जी के मना करने पर भी। और फिर वहां पर उन्होंने देखा कि शिव जी का अपमान हुआ, न तो कोई उनसे बात कर रहा था और न ही शिव जी के लिए कोई हिस्सा रखा हुआ था। बाकी सारे अन्य देवताओं के लिए आहुतियां थी, उनके उनके हिस्से थे, लेकिन शिव जी के लिए कोई हिस्सा नहीं था। तो ऐसे अपमान को देखकर सती देवी सहन नहीं कर पाई। जब वे पहुंची, उनका अपमान हुआ, उन्होंने सहन कर लिया, उनसे किसी ने बात नहीं की, उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन जब शिव जी का अपमान हुआ तो वो सहन नहीं कर पाए, और फिर इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने देह को त्याग देंगी, अग्नि जलाकर फिर उसमें वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन अग्नि में प्रवेश करने से पहले सती देवी ने बहुत सुंदर उपदेश दिए, और हम पिछली बार उन उपदेशों की चर्चा कर रहे थे। बहुत सुंदर उपदेश उन्होंने दिए, उनमें से कुछ उपदेशों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और अब आगे उनकी चर्चा करेंगे। सती देवी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति से कहा कि हमें हर जीव को समान रूप से देखना चाहिए। ये चल नहीं रहा,
पंखा लगा ना, मैंने कहा दूसरा पंखा ना, वो भी खराब है। ये सब चटने की
तो हरेक को समान दृष्टि से देखना, ये पहली शिक्षा थी सती देवी की। दूसरी शिक्षा क्या थी, कोई बता सकते हैं, किसी को याद है? हाँ, सब साथ में बोलेंगे तो समझ, एक व्यक्ति बोले। हाँ, दूसरों में दोष नहीं देखना, और हाँ, जो उनके अंदर अच्छे गुण हैं उसको बहुत बढ़ा देना। तो ये दूसरी शिक्षा उन्होंने दी, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले दोष देखते हैं उस जगह का, बाद में हमें अच्छी चीजें दिखाई देती हैं। तीसरी शिक्षा उन्होंने क्या दी, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, महान व्यक्तियों से कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और चौथी, वेरी गुड, ये जगन्नाथ है, इनको सब पता है, इसलिए बाहरी दृष्टि से किसी को नहीं देखना चाहिए, केवल बाहर से, उनके शरीर से, उनकी बाहरी स्थिति से व्यक्ति के गुण पता नहीं चलते हैं, इसलिए व्यक्ति को गुणों से देखना चाहिए। अगर हम लोग बाहरी दृष्टि से देखने लगे तो फिर भगवान विष्णु सांप के ऊपर सोते हैं, है ना, अनंत शेष सांप है वो, तो फिर कैसे व्यक्ति हैं जो सांप के ऊपर सोते हैं। तो इससे उनकी कोई स्थिति में फर्क नहीं पड़ता, शिव जी राख लगाए या फिर गले में सांप डालकर घूमे, कुछ भी करें, ये बाहरी है, उनके गुण नहीं है। तो ये चौथी शिक्षा सती देवी ने दी थी। और पांचवी बताया नहीं, ये भी हम सोच रहे थे, पता नहीं याद है कि नहीं आप लोगों को, कि चार ही बताई है, आगे नहीं बताएंगे। उसके बाद सती देवी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देती हैं, जो हम सब भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे किसी भी मार्ग से क्यों ना हो, लेकिन ये एक शिक्षा हर मार्ग में बहुत आवश्यक है, और सती देवी ने उसको दिया। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि दोष नहीं देखना, समान देखना सबको, बाहरी दृष्टि से नहीं देखना, अब फिर वो भक्ति में आने के बाद वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा सुन लेता है, अर्थात कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है ना, कोई व्यक्ति आकर हमसे किसी दूसरे की निंदा करता है तो कानों में अमृत पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है, सब ध्यान रहता है, कृष्ण की बात करें तो कान खुलते ही नहीं है, कृष्ण की बात में तो ऐसा लगता है कि मानो कब ये खत्म होगा, कब बंद होगा, ये वही बात, आत्मा शरीर कृष्ण भगवान, लेकिन जहां हो कि तुम्हें पता है उसके घर में क्या हुआ है, हाँ एकदम सारी नींद चली जाती है, सब कुछ तैयार, व्यक्ति एकदम अपने पूरे हृदय से उस चीज को सुनते हैं। तो सती देवी कहती हैं कि अगर हम किसी की निंदा सुने, किसी भी वैष्णव की निंदा अगर हम सुनते हैं, तो व्यक्ति के पास तीन ही चुनाव हैं। वो कहती हैं, पहला चीज, उसे उस व्यक्ति की हत्या कर देनी चाहिए जो निंदा कर रहा है। दूसरी चीज, अपने प्राण दे देने चाहिए, अगर उसके प्राण नहीं ले सकते तो अपने प्राण दे देने चाहिए, और तीसरी चीज, अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपने कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, विशेष करके भक्ति में, कि हमें वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेषतः वैष्णवों के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। और ऐसे बताया गया है, जैसे यहां सती देवी भी बता रही हैं कि या तो हमें अपने प्राण ले लेने चाहिए या उसके प्राण ले लेने चाहिए। सती देवी उनको कहती कि आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहती हूं, अपने प्राण दे देती हूं, क्योंकि मैंने सुना, मैंने देखा कि आपने शिव जी का अपमान किया, वैष्णव का अपमान किया। तो यहां पर वैष्णव अपराध के विषय में सती देवी एक महत्वपूर्ण चर्चा प्रारंभ कर रही हैं। क्यों इतना महत्व दिया कि क्या अपने प्राण दे देने चाहिए अगर केवल हम किसी की निंदा सुन ले वैष्णव की, या उसके प्राण ले लेने चाहिए, ये तो बहुत, मानना चाहिए कि बहुत ज्यादा हो गया। अगर कोई कहते भी हैं तो हमें कह सकते तो बहुत ज्यादा हो गया, अरे ठीक है सुन लिया वहां से चले जाना, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम प्राण दे दें, अपने किसी के प्राण ले लें, ये तो बहुत ज्यादा है, या जिसको संस्कृत में अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति मतलब कि वो बहुत ज्यादा, किसी चीज को बहुत बड़ा बता देना, आपका चेहरा चांद के समान है, ये अतिशयोक्ति है, या फिर और ऐसे बहुत सारे भी, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं, ये कवियों का काम है। तो ऐसी जो चीजें हैं उससे दूर रहना, तो ये अतिशयोक्ति लगती है कि ये क्या इतना सब, लेकिन इसके कारण है। वैष्णव अपराध क्या है, भक्तों के प्रति अपराध क्या है, इसको समझना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक ग्रंथ में चार प्रकार के अपराधों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं पहले अपराध होते हैं नाम अपराध, जो नाम के प्रति हम लोग अपराध करते हैं। हम लोग हर रोज मंदिर में सुबह 10 नाम अपराधों की सूची पढ़ते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो ऐसे नाम अपराध। दूसरा वो कहते हैं सेवा अपराध। सेवा अर्थात जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते करते बहुत से अपराध हो जाते हैं, जैसे भगवान के हम श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार करते करते कभी कभी पिन भगवान को चुभ जाती है, कभी कभी हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम गंदे हाथ से या जमीन पर हाथ लगा के फिर भगवान को हाथ लगा देते हैं, ऐसे बहुत से सेवा अपराध हैं। कभी हार बनाते समय भगवान का गंदा जमीन से टच करके फिर उसको भगवान के हार में स्पर्श करा देते हैं, तो ये सारे सेवा अपराध हैं, अर्थात सेवा करते हुए जो अपराध होते हैं। एक नाम के प्रति अपराध, दूसरे सेवा के प्रति अपराध, और तीसरे वैष्णवों के प्रति अपराध। तीसरी श्रेणी वो कहते हैं वैष्णव अपराध। और चौथा वो कहते हैं कि किसी भी जीव के प्रति क्रूरता, ये भी अपराध है। जब हम किसी जीव, चाहे वो भक्त ना हो, लेकिन अगर हम उसके प्रति क्रूरता दिखला रहे हैं तो ये भी अपराध है, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो इसलिए उसमें फिर वो वैष्णव अपराध की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये जो वैष्णव अपराध है ये बहुत खतरनाक है भक्ति के लिए, इसीलिए इतना उसको कहा गया कि वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वो कभी अपराध नहीं लेते हैं। अगर उनके प्रति कोई अपराध कर भी देता है तो वैष्णव सोचते हैं ये मेरे कर्मों का फल है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक समय प्रवचन कर रहे थे, उनके सारे शिष्य उनके सामने बैठे थे, बहुत से शिष्य, और अचानक उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, शिष्यों में से नहीं दूसरे अन्य लोगों में एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने प्रभुपाद को बहुत कुछ बुरा भला कहना शुरू किया। कोई कारण नहीं था, प्रभुपाद ने उसका कुछ नहीं किया था, बस खड़ा हुआ, प्रभुपाद को बुरे बुरे शब्द कहना शुरू किया, प्रभुपाद सुनते रहे। बाद में जब शिष्यों ने पूछा कि आपने इतने आराम से सुना क्यों, वो इतना गलत कह रहा था, आप हमें कहते हम लोग उसको चुप करा देते, तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे कर्म होंगे, पिछले जन्म में मैंने कुछ उसका अपमान किया होगा, अब उसने कर लिया, अच्छा है खत्म हो गया, अगर रोक देता तो और एक जन्म लेना पड़ता इसकी ये बातें सुनने के लिए, अच्छा है अभी सुन। ये भक्त है, तो भक्त कभी अपने ऊपर अपराध नहीं लेते। प्रभुपाद ने नहीं कहा कि अरे इसने इतने महान, मेरे जैसे महान भक्त के प्रति अपराध कर दिया, नहीं, प्रभुपाद ने कहा होगा कुछ, मेरे कर्मों का फल है। तो एक भक्त हमेशा यही लेता है कि जो कुछ हो रहा है उसके कर्मों का फल है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं लेते। भगवान जब देखते हैं कि भक्त के प्रति कोई अपराध हो रहा है, कोई व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, तो फिर वो सहन नहीं करते। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम लोग दुर्वासा मुनि की कथा में देखते हैं। अम्बरीश महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, काफी समय तक यज्ञ किया, उपवास किया, पूरा समय, काफी दिन उन्होंने उपवास किया। अब समय आया था उपवास तोड़ने का और वो उपवास तोड़ना चाहते थे, लेकिन तभी दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि ने कहा कि मुझे भोज स्वाभाविक है, कोई आए तो उससे पूछा जाता है आप भोजन कीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं स्नान करके आता हूं, तैयारी करो। दुर्वासा मुनि स्नान करने चले गए और यहां समय बीत रहा है, अब क्या करें अम्बरीश महाराज, क्योंकि नियम यह है कि घर में जब कोई अतिथि आते हैं वो भी ऐसे महान भक्त भगवान के, उनको खिलाए बिना हमें नहीं खाना चाहिए। ये पहले हर घर में नियम था, आज तो बताना पड़ रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन पहले हर घर में ये नियम था, कोई नई बात नहीं थी, कोई विशेष बात नहीं थी, हर घर में ऐसा होता था। कोई अतिथि आए उनको पूछा नहीं जाता था आप पानी लेंगे क्या, आजकल ऐसा हो गया कोई घर में आता तो लोग ये पानी लेंगे, मतलब ऐसे पूछे नहीं ले तो अच्छा है जाइए, अब क्या है कितने समय बैठेंगे, तो ऐसा नहीं था। पहले बिना पूछे कोई घर में आए तो उनके सामने जल और फल और पकवान इत्यादि रखे जाते थे, ये तो नियम था, पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आजकल पूछना पड़ता, आजकल लोग पूछ लेते हैं क्योंकि चाहते नहीं है देना और प्रसन्नता नहीं। तो अतिथि आए तो नियम यह है कि पहले उनको खिलाना और फिर हम खाना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज इस दुविधा में थे कि अगर मैं नहीं खाता हूं तो जो उपवास तोड़ने का समय है वो बीता जा रहा है। तो बाकी जो ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञ कराया था वो बोल रहे थे महाराज उपवास तोड़ना है, क्योंकि जब उपवास किया जाता है तो उसका एक समय होता है तोड़ने के लिए, जिसको पारण समय कहते हैं। तो उस समय में करना चाहिए तोड़ना, जैसे हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, अगले दिन पारण समय होता है तो हम लोग उस समय में ही व्रत तोड़ते हैं, 6:25 से 10 बजे के बीच में। तो अब समय निकला जा रहा है, अम्बरीश महाराज से सब ब्राह्मण कह रहे महाराज आपको तोड़ना है व्रत, कुछ कीजिए। और अम्बरीश महाराज कहे कैसे मैं खा लूं, पहले अतिथि आए हैं। तो ये हवा उधर जा रही है, पहले अतिथि आए हैं मुझे उनको खिलाना है। तो अब दुविधा में है, खाएं तो तकलीफ है क्योंकि अतिथि का अपमान होता है, नहीं खाएं तो तकलीफ है, इतने दिनों तक जो उपवास किया वो व्यर्थ जा रहा है, ब्राह्मण कह रहा है आपको तोड़ना है। तो अम्बरीश महाराज क्या करें, तो फिर ब्राह्मणों ने उन्हें कहा कि एक उपाय है, आप जल ग्रहण कीजिए। अर्थात उन्होंने निर्जल उपवास किया था, जल भी ग्रहण नहीं किया था, तो उन्होंने कहा आप जल ग्रहण कर लीजिए, जल के द्वारा आपका व्रत टूट भी जाएगा और साथ साथ आपने कुछ खाया भी नहीं वो भी ठीक होगा, तो अतिथि का भी मान बना रहेगा कि आपने अतिथि के पहले कुछ खाया नहीं, और आपका जो वचन है अपने जो पारण समय है वो भी पूरा हो जाएगा। तो अम्बरीश महाराज ने कहा ये बात ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया बस उपवास तोड़ने के लिए। अब दुर्वासा मुनि आए और उन्हें पता चला कि अम्बरीश महाराज ने उपवास तोड़ने के लिए कुछ ग्रहण कर लिया, तो क्रोध में आ गए। दुर्वासा मुनि ऐसे ही क्रोध में आते रहते हैं, दुर्वासा मुनि का हर जगह पे आप देखिए, जहां जाते क्रोध में आ जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं अभी इनको श्राप दे देता हूं, इनको मारने की तैयारी करने लगे। उन्होंने एक राक्षस को प्रकट कर दिया क्रोध में आकर, और भगवान ये सब देख रहे हैं। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा बताया जाता है कि भक्ति की जो 9 विधियां हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि, श्रवण से जो प्रारंभ होता है, बहुत से भक्त हैं जिन्होंने एक विधि के द्वारा अपने जीवन को पूरा किया, जैसे परीक्षित महाराज, उन्होंने केवल श्रवण करके अपने जीवन को पूरा कर लिया, या फिर सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने कीर्तन अर्थात भगवान के विषय में बोलकर अपने जीवन को पूर्ण कर लिया, ऐसे कई भक्त हैं। स्मरण में प्रहलाद महाराज जिन्होंने केवल भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को पूर्ण किया। लेकिन जब अम्बरीश महाराज की बात आती है तो ऐसे कहते हैं कि इन्होंने सारी 9 विधियों को पालन किया। बहुत सुंदर वर्णन है उनका, सवै मनः कृष्ण पदारविंदो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। उन्होंने अपने हाथों को भगवान की सेवा में मंदिर मार्जन इत्यादि में लगाया, मंदिर साफ करने के लिए, अपनी जिह्वा को भगवान के विषय में बोलने के लिए लगाया, पांव से भगवान के मंदिर जाने के लिए लगाया इत्यादि, तो पूरी विधियों का पालन किया। तो ऐसे अम्बरीश महाराज जिनकी कोई गलती नहीं है, दुर्वासा मुनि उन्हें दंड दे रहे हैं, तो भगवान से सहन नहीं हुआ। अचानक सुदर्शन चक्र आए और उस राक्षस को तो मार दिया, और अब दुर्वासा मुनि के पीछे भागे, और दुर्वासा मुनि भागे, भागवत में वर्णन है, सब जगह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा पहले दूर जाओ, पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है, मेरे पास मत आओ नहीं तो तुम्हें छोड़ के मेरे पीछे लगेगा। बहुत प्रयास कर लिया और वर्णन ये है कि अंत में भगवान के पास गए वैकुंठ में कि बचाइए, आपका सुदर्शन चक्र है, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने भक्त के प्रति अपराध किया, उसी से क्षमा मांगिए, अगर वो क्षमा कर देंगे तब सुदर्शन रुकेगा, नहीं तो नहीं। तो फिर भागे 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 इनके पास आए, और इतने समय तक अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि अम्बरीश महाराज को दुख हो रहा था कि अरे मेरे यहां पर कोई अतिथि आए और मैं उनको कुछ दे नहीं पाया, तो उन्होंने कुछ नहीं लिया, वो इंतजार कर रहे थे। और दुर्वासा मुनि वापस आए, दुर्वासा मुनि क्षमा मांगने लगे अम्बरीश महाराज से, क्षमा कर दीजिए। और अम्बरीश महाराज को बड़ा दुख हुआ, आप इतने बड़े ऋषि, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं, तो उन्होंने प्रार्थना की सुदर्शन चक्र से आप जाइए, तब वो शांत हुए। तो इस पूरे प्रसंग में शिक्षा क्या भगवान देना चाह रहे हैं, ये कि अगर भक्त के प्रति अपराध होता है तो भगवान सहन नहीं करते हैं, भक्त सहन कर लेता। अम्बरीश महाराज ने कोई बुरा नहीं माना, उनकी गलती ना होते हुए भी उनको दंड देने के लिए तैयार हो गए दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज ने कहा कोई बात नहीं, मेरे कर्म है, लेकिन भगवान सहन नहीं करते। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण चैतन्य लीला में आता है कि क्या भगवान केवल साधारण लोग अगर भक्त के प्रति अपराध करते उनको दंड देते हैं, या कोई बहुत श्रेष्ठ भक्त भी अगर अपराध कर दे तो क्या भगवान उन्हें भी दंड देते हैं? तो भगवान उन्हें भी दंड देते हैं, और इसका प्रमाण उन्होंने दिया अपनी ही माता को दंड देकर। भगवान की माता, चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी, शची देवी ने प्रार्थना की थी। शची देवी से बहुत प्रेम करते थे अपनी मां से चैतन्य महाप्रभु। जब सन्यास लिया तो उन्होंने प्रार्थना की कि पास में रहो, दूर मत जाओ, वृंदावन मत जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे अपनी मां से कि उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके पास रहता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, केवल आपके पास रहूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। एक सन्यासी होकर तुम घर में अपनी मां के साथ रह रहे हो, ये भी ठीक नहीं है, तो तुम थोड़ा पास में रहो, जगन्नाथपुरी में रहो, ताकि वहां से मुझे समाचार मिलता रहे, क्योंकि वो बंगाल में रह रही थी नवद्वीप में, तो समाचार मिलता रहे। वृंदावन से तो कोई समाचार नहीं आएगा। तो इतना प्रेम करते थे, लेकिन एक समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत क्रोध किया। उन्होंने कहा कि आपको कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिलेगा, आपको कृष्ण की भक्ति कभी नहीं मिलेगी। शची माता बहुत दुखी हो गई, उन्होंने पूछा क्या मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? तो उन्होंने कहा कि आपने मन में अद्वैत आचार्य जैसे महान भक्त के प्रति अपराध किया। क्या अपराध किया था उन्होंने? उनके जो बड़े पुत्र थे विश्वंभर, विश्वरूप, क्षमा करिए, तो उनके जो बड़े पुत्र थे उन्होंने सन्यास लिया था, और उन्होंने जब सन्यास लिया, वो घर छोड़कर चले गए सन्यास के लिए बिना बताए माता पिता को, तो उस समय मन में शची देवी ने यह सोचा था कि यह सब अद्वैत आचार्य की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज्यादा अद्वैत आचार्य के घर जाता था, वहां भागवत सुनता था, और उन्हीं के कारण उन्होंने ही इसको गलत सिखा दिया, वो घर छोड़कर चला गया। केवल इतना सोचा था मन में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने उस समय वो सोचा था, आपने अपराध कर दिया, इसलिए अब आपको उनसे क्षमा मांगनी। शची देवी ने कहा मैं सब करने तैयार हूं, क्या करना? तो शची देवी जो उनकी माता हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली आपको सर पे लगानी। शची माता ने कहा वो देंगे नहीं, वो कभी भी, मैं तैयार हूं लेकिन वो चरण छूने नहीं देंगे, क्योंकि शची माता को वो अपनी माता के समान मानते हैं अद्वैत आचार्य। तो उन्होंने कहा वो कभी छूने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा वो मैं नहीं जानता, आपको ये करना है। तो खैर एक समय ऐसा हुआ जब अद्वैत आचार्य ने दंडवत प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, और पीछे शची माता थी, उन्होंने देखा और तुरंत उन्होंने चरणों को स्पर्श किया। तो एक छोटी सी घटना, लेकिन ये समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपनी ही मां को भी दंड देने के लिए तैयार थे अगर वो वैष्णव अपराध करती। इसलिए वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति अपराध से बचना चाहिए, और सती देवी यहां वही कह रही। स्वयं श्री कृष्ण ने दिखलाया, श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर लीला की केवल ये दिखलाने के लिए कि अगर भक्तों का अपमान होता है तो सर्वनाश निश्चित है। और ये लीला थी यदुवंशियों की अंत्य लीला। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अब श्री कृष्ण ने सोचा, करीब 125 वर्ष वो रह चुके थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मेरा कार्य पूरा हुआ है, मुझे वापस जाना है, लेकिन वो सोचने लगे कि ये यदुवंशी जो उनके ही वंश के लोग हैं उनको कोई मार नहीं सकता, वो बड़े शक्तिशाली हैं, तो इनको अगर मैं यहां छोड़कर चला गया तो फिर ये कैसे जाएंगे? तो उन्होंने सोचा कि कुछ उपाय करना चाहिए, और उपाय क्या हुआ? एक दिन प्रद्युम्न, सांब इत्यादि जो यदुवंशी हैं, उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि मुनि आए हैं, नारद मुनि, पर्वत मुनि इत्यादि। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इनसे जाके थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए, इनसे कुछ इनकी हंसी उड़ानी चाहिए, इनसे मजाक करना चाहिए। भूल गए कि ये लोग महान भक्त हैं। तो वे लोग सब आए, उन्होंने सांब को, जो एक पुरुष है, उसको साड़ी पहना दी, उसको एक स्त्री का रूप दे दिया, और इतना ही नहीं, एक तकिया उसके पेट के ऊपर रख दिया, बांध दिया अंदर, ऊपर से साड़ी पहना दी, ये दिखलाने के लिए कि ये स्त्री गर्भवती है। वो पुरुष है, न स्त्री है न गर्भवती है, लेकिन केवल दिखलाने के लिए। और उन्होंने सोचा कि हम इन ऋषि मुनियों का मजाक करेंगे, और वो ऐसे उसको पूरा ढक कर लेकर आए, उसके मुख को सामने लेकर आए और पूछने लगे कि हे ऋषियों, हे मुनि, आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप भूत भविष्य सब जानते हैं, जरा बताइए कि ये जो स्त्री है, इसके लड़का होगा या लड़की। अब वो सांब है, वो पुरुष है, ना वो गर्भवती है। तो उन्होंने सोचा कि ये कुछ भी कहें, अगर ये कहेंगे लड़का होगा तो भी, या कहें लड़की होगी तो भी, हम इन्हें दिखाएंगे कि देखो, आप लोग को कुछ पता नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हो, ना तो इनके लड़का होने वाला है ना लड़की होने वाली है। तो इसीलिए उन्होंने आके पूछा कि लड़का होगा या लड़की। तो नारद मुनि को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि नारद मुनि ने देखा कि इतने सारे ऋषियों में ये इतना इनको अहंकार हो गया, यदुवंशियों को, कि इतने महान ऋषि यहां पर सारे उपस्थित हैं, उनका इतना बड़ा अपमान, धोखा दे रहे हैं उनको और उनकी हंसी कराना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने क्रोध में कहा कि मूर्ख, इसके गर्भ से एक ऐसा लोहा पैदा होगा जो तुम्हारे सारे वंश का नाश करेगा। ये सुन के सब घबरा गए, ये क्या हो गया। उन्होंने ये नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा नारद मुनि कहेंगे लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन नारद मुनि ने श्राप दे दिए और अचानक ही घबरा गए। उन्होंने तुरंत हटाया वो सब, तो देखा तो सही में वहां पर एक लोहे का टुकड़ा था। भागे लेकर उग्रसेन के पास, राजा के पास, कि ये तो अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा क्या करें। तो उग्रसेन ने सब सुना और उन्होंने कहा था नारद मुनि ने कि यही टुकड़े तुम्हारे सारे लोहे के जो टुकड़े हैं, तुम्हारे सारे वंश को नाश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको पूरा पाउडर बना दो, इसको पूरा खत्म कर दो, बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा था, उसको पूरा पाउडर बना दो। तो उन्होंने उसको पाउडर बनाया और वो समुद्र में फेंक दिया, और एक टुकड़ा रह गया, उसको भी फेंक दिया, उससे घास जैसे आ गए। ऐसे बताते हैं कि वहां पर तीरों के समान घासें उगाई उसमें, और वो जो उन्होंने फेंका था समुद्र में, वो भी बहकर आ गया बाहर, और उससे वो उग गया। और एक समय प्रभास क्षेत्र में ये लोग जब गए तो आपस में ही लड़े, और ऐसे ही लड़ने में उन्होंने वही जो लोग टुकड़े थे उनको उठाए और एक दूसरे को मार दिया, सारा वंश समाप्त हो गया यदुवंश। श्री कृष्ण ने ये लीला की केवल ये दिखलाने के लिए कि अगर कोई भक्तों का अपमान करता है, चाहे मजाक करने की दृष्टि से या जो भी, भगवान सहन नहीं करते, उसको दंड मिलता ही है। तो इसलिए ऐसे अपराध का वर्णन यहां सती देवी कर रही हैं कि इसीलिए वो कह रही है, या तो उस व्यक्ति को मार सको मार देना चाहिए, अपने प्राण दे देने चाहिए, नहीं तो कान बंद करके चले जाना चाहिए वहां से। लेकिन वैष्णवों की निंदा को सुनना नहीं चाहिए। चैतन्य लीला में एक बहुत सुंदर कथा आती है श्रीवास ठाकुर की। श्रीवास ठाकुर के घर पे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे। आप सब ने सुना होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया तो दिन में कीर्तन किया करते थे सड़कों पर। ये कभी होता नहीं था, किसी ने देखा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया, सारे शिष्यों के साथ जाते और दिन भर सड़क पर कीर्तन होता, लोगों को हरि नाम सुनने के लिए मिलता। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्तों से कि हम लोग दिन में कीर्तन करते हैं, रात का समय क्यों बर्बाद करते हैं, उस समय भी भगवान का नाम लेना चाहिए। तो फिर रात में कीर्तन प्रारंभ हुआ। तो दिन में बड़ा शांत कीर्तन होता, रात में दरवाजे सारे बंद करके श्रीवास ठाकुर के घर में अंदर कीर्तन करते, किसी को अनुमति नहीं देते आने की। तो बहुत सारे लोग इससे ईर्ष्या करने लगे कि ये लोग क्या करते हैं अंदर, और सब गलत गलत बात कही। ये लोग कमरा बंद करके इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं रात भर, लगता है इनको खाने के लिए नहीं मिलता है, पेट में दर्द होता है इसलिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। या कुछ लोग कहने लगे ये लोग अंदर अनैतिक कार्य करते हैं, इसीलिए इन्होंने सब दरवाजे बंद कर दिए, किसी को अंदर नहीं आने देते हैं, ये अनैतिक कार्य होता है यहां पर। तो ऐसे सब लांछन करने लगे। तो एक व्यक्तिगत था जिसका नाम था गोपाल, गोपाल चपल। उसने सोचा मैं श्रीवास जो ठाकुर है इसको मैं बहुत बदनाम कर दूंगा। तो उसने क्या किया, ये दिखाता है बहुत बड़ा भक्त है, बहुत अच्छे से ये भक्ति करता है, कृष्ण का भक्त है, ठहरो मैं इसको भी बताता हूं। तो उसने एक दिन सुबह सुबह उसके घर के बाहर दुर्गा पूजा का सामान, वो भी ऐसे, दुर्गा पूजा भी कई तरह से की जाती है लेकिन ऐसे जिसमें बड़ी तामसिक रूप से पूजा की जाए, शराब की बोतल ये वो पता नहीं क्या क्या उसके घर के बाहर रख दिया। तो सुबह श्रीवास ठाकुर ने देखा, दरवाजा खोला तो अरे ये क्या पड़ा है, तो वो समझ गए, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, जल्दी जल्दी छुपाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने सबको बुलाया, आओ 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 देखो देखो मैं क्या करता हूं, दरअसल मैं स्वांग, मैं झूठा नाटक करता हूं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, लेकिन देखो सही में मैं ये करता हूं। वहां पर शराब की बोतल थी और पता नहीं क्या क्या मांस और इत्यादि, सही में मैं ये करता हूं। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया कि ये तो हो नहीं सकता, श्रीवास ठाकुर तो ऐसे नहीं है, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन ऐसे बताते हैं कि उस गोपाल चपल को कोढ़ हो गया बहुत जल्दी, और वो सब लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया, वो नदी के पास रहने लगा। चैतन्य महाप्रभु एक बार वहां से गए, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से एक अपराध हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं, तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। उसके बाद फिर गोपाल चपल ने जाकर जब श्रीवास ठाकुर से क्षमा मांगी तो श्रीवास ठाकुर ने तुरंत क्षमा कर दी। भक्त ऐसे ही होते हैं, भक्तों को कोई मान अपमान की चिंता नहीं है, तो उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया कि नहीं नहीं आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। तो ऐसे ये वर्णन बहुत सारे असंख्य वर्णन शास्त्रों में मिलते हैं कि जहां लोगों ने भक्तों के प्रति अपराध किया तो उसको भगवान ने सहन नहीं किया। तो इसीलिए यहां सची देवी बहुत सुंदर बात समझा रही हैं कि हमें भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, वो कहते हैं कि ये जो भक्तों के प्रति अपराध है ये पागल हाथी को अच्छे से बगीचे में छोड़ देने के समान है। आप कई समय, काफी समय तक, कई वर्षों तक एक बगीचा बनाओ, बहुत सुंदर बगीचा, अच्छे फूल, अच्छे तरह से पेड़ वृक्ष इत्यादि सब, और एक दिन उसमें एक पागल हाथी को छोड़ दो, बस क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, वो हाथी सब कुछ ही समय में समाप्त कर देगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारी भक्ति भी ऐसे ही है, हम लोग कई वर्षों तक, कई जन्मों तक भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। कोई कहते हैं भगवान निराकार हैं, कोई कहते हैं साकार हैं, कोई कहते भगवान है ही नहीं, कोई कहते भगवान मर गए, कोई कहते हमें आवश्यकता नहीं भगवान की। धर्म और भगवान में ही सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं और ऐसी भ्रांतियां बहुत फैल रही हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम लोग कई काफी समय से अपने भक्ति के बगीचे को बड़े ध्यान से हम लोग बनाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, एक पागल हाथी, वैष्णव अपराध और सब समाप्त। जितना भी हमने भक्ति के बाग बगीचे को बहुत अच्छे से बनाया है, एक अपराध से सब चला जाता। इसीलिए सती देवी यहां भागवत के इस प्रसंग में इतना महत्व दे रही हैं। जैसे उन्होंने पहले ही बताया, शिवजी मतलब, शिव मतलब जो सबका मंगल करते हैं, उनका नाम का अर्थ है मंगल, और आप जैसे व्यक्ति ने उनसे द्वेष किया अपने ही पिता को वो ऐसे तरह से कह रहे हैं। तो ये पांचवी शिक्षा उन्होंने दी, याद है ना पांचवा? आपको, आप में से कौन पांच शिक्षाएं एक साथ बताएंगे, हाथ ऊपर कीजिए, किसको पांच याद है? अभी हम लोगों ने चर्चा की पांच शिक्षाओं की, कोई किसी को याद नहीं पांचों शिक्षाएं? बड़ी विचित्र बात है। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले से, लेक्चर फिर से प्रारंभ। कोई इसमें थोड़े जोर से, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी में दोष नहीं देखने चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी को बाहरी दृष्टि से उस नहीं पहचानना चाहिए, उसके गुणों से पहचानना चाहिए। पांचवा भूल गए? हाँ, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, अभी इतना सारा उसी का वर्णन था। तो पांचवा वैष्णव अपराध नहीं। तो ये शिक्षाएं सती देवी किसको दे रही हैं? हाँ, अपने ही पिता दक्ष प्रजापति को। तो उनको ये आवश्यकता क्यों पड़ी अपने ही पिता को शिक्षा देने के लिए? क्योंकि पिता ने ऐसे कार्य किए। सती देवी को अपना देह छोड़ने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पिता उनसे वो संबंधित थी और वो नहीं चाहती थी कि आज के बाद कोई मुझे उनके पिता के नाम से पुकारे, इसीलिए शरीर को ही समाप्त कर देते। पिछली बार हम लोग एक प्रश्न पर चर्चा करने वाले थे कि ये शरीर किसका है, आपसे हमने पूछा था, आप लोगों ने कुछ प्रश्न के उत्तर दिए थे और हमने कहा था कि अगली बार इसकी चर्चा करेंगे। शरीर किसका है? नल कुंवर और मणिग्रीव के प्रसंग में नारद मुनि इस प्रश्न को उठाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नल कुंवर मणिग्रीव की कथा आप जानते हैं, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं और कुबेर के पुत्र मतलब बहुत पैसा है और बड़े सुंदर हैं दोनों, और तो शक और शिवजी के अनुयायी हैं। देखिए, पहले तो पैसा, ऊपर से सुंदरता, ऊपर से शिष्य किसके हैं? शिव जी के। तो यानी मान प्रतिष्ठा भी है, धन भी है, सौंदर्य भी है, सब है, आदमी पागल होना निश्चित है, मतलब मदांध, मदांध जैसे कहते हैं, मतलब उसके नशे में हो जाना निश्चित है, किसी को भी हो जाएगा। रावण ने ये कहा था शिव जी से, जब शिव जी की पूजा कर रहा था, कि मुझे अहंकार होना स्वाभाविक है, जिसके पास इतनी शक्ति हो, त्रिलोकेश्वर देवता जिससे कांपते हो, उसको अहंकार होना स्वाभाविक है। तो इनके पास नलकुवर मणिग्रीव, ये दो नाम, दो भाई थे, इनके पास धन की कमी नहीं। कुबेर तो देवताओं के खजांची हैं, बालाजी को उन्होंने तो लोन दिया है, अभी तक चुका रहे हैं बालाजी, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं, सुंदरता, और फिर शिव जी के शिष्य, कौन कोई कहने वाला है? तो ऐसे अहंकार हो गया। देखिए, ये जो भागवत के प्रसंग हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगता है, ऐसे कुबेर के पुत्र, इनको ऐसा हो गया, शिक्षा प्रद है कि जिस समय हमारे पास धन हो, सौंदर्य हो, बल हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, मदांध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान फिर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, या तो उसको ले लेते हैं। हमें ये जानना चाहिए, भगवान की कृपा है, अगर किसी के पास धन है, भगवान के ऐश्वर्य का अंश मात्र है, किसी के पास सौंदर्य है, भगवान के ऐश्वर्य का अंश मात्र है, भगवान अपने ऐश्वर्य के अंश को किसी जीव के द्वारा प्रकट करा देते हैं, उसके पास धन आ जाता है, सौंदर्य आ जाता है, बल आ जाता है, यश आ जाता है, पद आ जाता है। तो ये दोनों अहंकार में अंधे हो गए, और ऐसा वर्णन है भागवत के 10वें स्कंद में कि इन दोनों ने कुछ स्त्रियों के साथ मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी अर्थात गंगा, गंगा जब ऊपरी लोकों में बहती हैं तो उनको मंदाकिनी कहते हैं, जब पृथ्वी पर बहती हैं तो उनको भागीरथी कहते हैं, और जब नीचे लोकों में बहती हैं तो भोगवती कहलाती हैं। वही गंगा है लेकिन अलग अलग नाम है। तो मंदाकिनी अर्थात ऊंचे लोकों में गंगा जी में, देखिए गंगा जी ये बड़ी पवित्र नदी है, इसका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नलकुबर मणिग्रीव ने स्त्रियों के साथ नग्न उसमें स्नान करना, उसमें क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। दरअसल ये एक अपराध है, किसी भी पवित्र स्थान में, किसी भी पवित्र नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, नदी का अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल लोगों को ये पता नहीं है। हमें ध्यान है कई साल पहले हम हरिद्वार गए थे। आप में से कितने लोग हरिद्वार गए हैं? कोई गए हैं? ओके, कुछ लोग गए। वहां एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है जिसे हर की पौड़ी कहते हैं। हर की पौड़ी मतलब वो स्थान जहां गंगा जी का प्रमुख मंदिर है, वहां पर आरती होती है शाम के समय। तो वहां पर बैठने का स्थान है, अब तो बहुत सारे ब्रिज बना दिए, पहले नहीं थे। तो बैठने के स्थान है, इस तरफ भी गंगा जी, उस तरफ भी गंगा जी। तो हम जब गए तो एक व्यक्ति ने हमें दिखाया कि देखिए वो व्यक्ति बैठा, आप देख रहे हैं उसको? हमने कहा हाँ। तो व्यक्ति गंगा में उस तरफ, गंगा की तरफ मुंह करके, उसके पांव गंगा में थे और हाथ में कुछ था, ऐसे गंगा में डाल के बैठे हुए थे, जैसे कोई रस्सी जैसी थी, रस्सी उन्होंने गंगा में डाली हुई थी। तो उन्होंने कहा वो देखिए आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं, व्यक्ति बैठा है, हमें लगा शायद मछलियां पकड़ रहा होगा रस्सी डालकर। आप देखते हैं ना, यहाँ ब्रिज पे जाइए तो रात में लोग खड़े रहते हैं। हम जब भी रात में आते हैं तो हमें जो साथ में होते हो बताते हैं, प्रभु जी ये देख रहे हो आप? हमने कहा क्या कर रहे हैं लोग, ऐसे घूमने आए? बोले घूमने नहीं, रात भर मच्छी पकड़ेंगे यहाँ बैठ खड़े रह के। तो हमने सोचा मच्छी पकड़ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप थोड़ी देर रुकिए, आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग वहां ऐसे भी रुकने वाले थे, तो हम लोग रुक गए। देखा तो थोड़ी देर वो व्यक्ति बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, और उसके बाद उसने वो जो रस्सी थी ऊपर खींची। तो रस्सी ऊपर खींची तो क्या था उसमें, हमें तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। गंगा जी में, हर की पौड़ी में, जहां लोग अपने पापों को धोने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, सामने मंदिर है, और वो क्या कर रहा था, उसने बोरी में, बोरी समझते ना आप लोग, क्या बोलते, गनी बैग, बोरी, बोरी जैसी चीज, ऐसे उसमें बियर की बोतल डालकर वो ठंडी कर रहा था उसमें। गंगा जी बड़ी ठंडी होती है, आपको पता है। गंगा जी हम लोग जब पहली बार गंगा जी में गए थे, हमें ध्यान है हम लोग 12 बजे करीब पहुंचे थे दोपहर को। तो बहुत शौक था हमें, गंगा, पहली बार गंगा देख रहे, पहली बार गंगा जी जीवन में, हम लोग बहुत छोटे थे, पहली बार देखा। तो हमारे पिताजी वगैरह मना कर रहे थे कि अरे जाना नहीं, हम लोगों ने सुना नहीं, सीधे जंप मार दिया अंदर। हम लोग को बहुत शौक था, हम जैसे ही मारा सारा सिर हिल गया, क्योंकि अंदर बर्फ था पूरा, ऊपर धूप, अंदर बर्फ, बहुत ठंडी होती है, खास करके ऋषिकेश हरिद्वार में बहुत ठंडा होता है। तो बियर की बॉटल डालकर अंदर बियर ठंडी कर रहे हैं, बताइए, गंगा जी में। और कोई स्थान नहीं मिला उसको, हर की पौड़ी में, गंगा जी के मंदिर के सामने, गंगा जी में बैठकर, हरिद्वार जो हरि का द्वार है, भगवान के धाम जाने का स्थान है, वहां वो बियर की बोतल ठंडी कर रहा। तो ऐसे नलकुवर और मणिग्रीव ने भी अपराध किया मंदाकिनी में। तो नारद मुनि वहां से आए, तो वर्णन है कि नारद मुनि को देखकर जो स्त्रियां थी वो तो सब भाग गईं, लेकिन ये जो दोनों थे, इन्होंने शराब पी हुई थी, मदांध, एकदम शराब के नशे में थे। तो उन्होंने कोई चिंता नहीं की, उन्होंने कहा जो भी आए हैं, नारद मुनि आए हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही खड़े रहे। भागवत में वर्णन है नग्न खड़े रहे नारद मुनि के सामने। और तो और आचार्य समझाते हैं कि वो मन में सोच रहे थे कि नारद मुनि को यहीं से आना था, और कोई दूसरा मार्ग नहीं था जाने के लिए। तो उस समय नारद मुनि उन लोगों पर कृपा करने के लिए उनको श्राप देते हैं। शायद ये कह रहा है कि प्रवचन मैं देना चाहता हूं। सो नारद मुनि उनको श्राप देना चाहते थे केवल उनकी भलाई के लिए। देखिए, जब भक्त अगर श्राप भी देते हैं तो ये भी उनकी भलाई के लिए होता। भक्त ऐसे श्राप नहीं देते किसी क्रोध में आकर, द्वेष में आकर, नहीं। नारद मुनि ने जो श्राप दिया वो भी उनकी भलाई के लिए था, क्योंकि नारद मुनि चाहते थे ये शुद्ध हो, ये इस चीज से, गलत चीज जो ये सोच रहे हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, इसके पश्चाताप करें। तो वो श्राप देते समय वो इस प्रश्न को उठाते हैं कि ये लोग अपने आप को जो शरीर मान रहे हैं, दरअसल शरीर किसका है? तो नारद मुनि कहते हैं, क्या ये शरीर अन्नदातु शब्द इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जो अन्न दान करता है, अन्न देता है, या अन्न खाने को, जैसे कोई व्यक्ति कार्य करता है किसी ऑफिस में तो ऑफिस वाले उसको पैसा देते हैं, तो क्या ये शरीर उसका है जो अन्न दान दे रहा है या अन्न दे रहा है आपको, या शरीर उसका है? नहीं। तो क्या ये शरीर माता पिता का है? ये नारद मुनि प्रश्न अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि अगर अन्नदाता जो देते हैं उसका नहीं है, ठीक है, तो क्या माता पिता का है? साधारणतः तो ऐसे ही माना जाता है, इस शरीर किससे आया है? माता से आया, माता पिता से आया है, तो माता पिता इस शरीर के मालिक हैं। वो प्रश्न करते हैं, क्या माता पिता इस शरीर के मालिक हैं? और अगर माता पिता नहीं, वैसे साधारणतः भारत में तो यही माना जाता है कि माता पिता ही शरीर के मालिक हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। व्यवहारिक तौर में देखते हैं कि शरीर का मालिक वो नहीं रहते। फिर वो प्रश्न करते हैं, कभी कभी भारत में एक प्रथा होती है कि किसी के अगर पुत्र नहीं होता, पुत्री होती है, तो पुत्री के पुत्र को वो गोद ले लेते हैं। तो नारद मुनि ये भी कहते हैं कि क्या पुत्री के या पत्नी के पिता की वो शरीर है, यानी अर्थात जो बच्चा है उसकी मां के पिता का, तो वो भी नहीं है। फिर वो बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं, क्या ये उस पुत्र का शरीर है जो अंत में अग्नि देता है? क्योंकि अग्नि कौन देता है? अग्नि पुत्र देता है। तो ये शरीर उसका है क्योंकि वो जला रहा है, तो क्या ये शरीर उसका है? और अगर नहीं, तो फिर आगे प्रश्न करते हैं कि ये हमारा है, आत्मा का है? अब ये भी माना जा सकता है आत्मा का शरीर है। हम कहते हैं ना हमारा है, जीवन भर हम कहते हैं हमारा शरीर है, तो क्या ये शरीर हमारा है? क्या ये शरीर उन कीड़े मकोड़ों का है जिनको जब शरीर दफना दिया जाता है तो कीड़े खा जाते हैं उस शरीर को? आप जानते हैं ना कि जब शरीर को दफनाया जाता है, थोड़े समय बाद अगर उसको निकाला जाए तो शरीर नहीं रहता, खाली हड्डियां रह जाती हैं, शरीर के खा जाता है। तो कहते क्या वो कीड़े मकोड़ों का है या फिर कुत्तों का है? जैसे एक धर्म है जिसमें मृत्यु के बाद शरीर को जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता, उसको फेंक दिया जाता है प्राणियों के खाने के लिए, पक्षी खा लेते हैं, कुत्ते खा लेते हैं, उसको फेंक दिया जाता है। वो सोचते हैं कि ये बड़ा शुभ कार्य है क्योंकि हम मरने के बाद भी किसी के लिए काम आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं। तो नारद मुनि कहते किसका है ये शरीर? हम मानते हैं हमारा है, वो तो है नहीं। अगर हमारा होता तो हम इसे रोक पाते, मृत्यु से रोक पाते, रोक नहीं पा रहे हैं, बढ़ने से रोक पाते, रोक नहीं पा रहे हैं। तो अंततः वो कहते हैं कि ये शरीर आया है पांच तत्वों से, भूमि रापो जल नलो वायु। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पांच तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है, भूमि से, अग्नि से, वायु से, आकाश से और जल से। तो इन पांच चीजों में बनता है और पांचों में ही विलीन हो जाता है। मृत्यु के बाद ये शरीर पांचों तत्व जो होते हैं अपने आप वो तत्व चले जाते हैं, अग्नि अग्नि तत्व में चली जाती है, जल जल में, वायु आकाश और पृथ्वी। और इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि ये शरीर ये कॉमन प्रॉपर्टी है सबकी, किसी की नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, ये सार्वजनिक है। मूर्ख है वो व्यक्ति जो अपना मानता है। ये भागवत में बहुत स्पष्ट नारद मुनि वर्णन करते हैं। तो इसीलिए, और इससे हमें क्या सीखना चाहिए? ये सुंदर वर्णन तो है, लेकिन इससे सीख ये है कि बहुत ज्यादा शरीर के लिए कार्य नहीं करने चाहिए। जब तक हम केवल शरीर के स्तर पर शरीर के लिए कार्य करते रहेंगे, तब तक हम अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठा सकते, इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं बना कि हम केवल खाएं पिएं, थोड़ा बहुत कमाएं, थोड़े अच्छे काम करें, मर जाएं, उसके बाद लोग कहें आपका एक पुतला लगा दें और उस पुतले पर सारे प्राणी आकर अपना, यही तो होता है। हमारे बड़े बड़े नेताओं के बड़े पुतले लगाए जाते हैं, साल भर गंदे रहते हैं, बस एक दिन उनके बर्थडे के दिन उनको साफ वाफ करके हार पहना देते हैं। कौन कौन मान सम्मान कर रहा है बताइए? उस समय बड़ा नाम हम आज कौन कर रहा है? तो शरीर की कोई मूल्य नहीं है। मूल्य किसका है? आत्मा का। मूल्य किसका है? गुणों का। व्यक्ति गुणों से जाना जाता है, शरीर से नहीं। मृत्यु के बाद भी उसके गुणों की चर्चा होती है, शरीर की नहीं। इसलिए गुण महत्वपूर्ण है। भक्ति में या अन्य जीवन में भी हमें गुणों को लाने का प्रयास करना चाहिए। शरीर को संवारना, शरीर को सजाना, शरीर के लिए कार्य करना जितना आवश्यक है करना चाहिए। हम लोग ये नहीं कह सकते कि शरीर के ऊपर देखना ही नहीं, ध्यान नहीं। नहीं, शरीर एक ये वाहन है, इसी वाहन से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। वाहन खराब होगा तो पहुंचेंगे नहीं। इसलिए वाहन को तो ठीक रखना है, लेकिन जितना है उतना ही। जैसे आपकी कार होती है तो आप जितना आवश्यक है उतना ही करते हो। उसमें पेट्रोल डालना है, उसमें ऑयल डालना है, हवा चेक करनी है, इतना ही करते हो। आपका बर्थडे है तो जाकर केक नहीं खिलाते हो उसको, सही है? आशा करते नहीं खिलाते होंगे। हमें नहीं पता किसी को अपनी कार से बड़ी आसक्ति हो तो जाकर वो कार को केक खिलाए कि ये मेरा लाल, मेरा पीला, जो भी। तो इसी तरह इस शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए। इसको खाना देना, इसको जो भी आवश्यकताएं हैं, मिनिमम जितनी उतना पूरी करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हमें प्रयास करना चाहिए कि इसके अंदर जो आत्मा है उसके स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करें। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा सती देवी ने दी, पांचवी शिक्षा, कि हमें वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। छठी शिक्षा वो देती हैं कि व्यक्ति को अपने नियत कार्य करते रहना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने कार्य अपने इच्छा से, कभी कभी हम लोग अपने कार्य को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के कार्य की निंदा कर देते हैं। ये बेकार काम है, ये बेकार काम है, मेरा काम सबसे अच्छा। नहीं, सती देवी कहती हैं अपनी नियत कार्य, नियत यानी जो आपकी स्थिति के हैं। चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम हैं। और फिर चार वर्ण हैं जिनमें हम लोग देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हरेक को अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं वो ब्रह्मचारी की तरह कार्य करें, गृहस्थों को गृहस्थों के नियम। वैसे शास्त्रों में सबके लिए नियम दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। तो फिर ऐसे कार्य, नियत कार्य हम करते रहें और दूसरों की कभी निंदा नहीं करें। दूसरे शब्दों में, हरेक के कार्य को आदर दें, किसी के कार्य को, किसी दूसरे के कार्य को नीची दृष्टि से नहीं देखें कि अरे ये तो केवल गड्ढा खोदने वाला है, ये तो केवल जूता बनाने वाला है, ये तो केवल ये करने वाला है। नहीं, वो उसका कार्य है, अगर वो कर रहा है तो उसको मान देना चाहिए, क्योंकि कम से कम कार्य करके कमा रहा है, चोरी करके तो नहीं कमा रहा, डाका डाल के तो नहीं कमा रहा। हाँ, आप उनकी निंदा कर सकते हैं, क्योंकि चोरी करना नियत कर्म नहीं है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि हमने कहा कि सबके कार्यों की आपको आदर करना चाहिए, तो आप कहें चोर का कार्य चोरी करना है, हत्यारे का कार्य हत्या करना है, तो हम उसको बड़े सम्मान से, चोर जी आइए हमारे मंदिर में, चोरी करके जाइए। नहीं, वो नहीं कर सकते, नियत कर्म। तो इसलिए दूसरों की निंदा करना बंद करना चाहिए। तो ये भी सती देवी चर्चा कर रही है, और भी बहुत सुंदर आगे उन्होंने चर्चाएं की हैं। दो मार्गों का वर्णन किया है कि जीव के लिए दो मार्ग होते हैं, किस तरह से वो कार्य कर सकता है। फिर आगे वो वर्णन उन्होंने और भी किया है कि उन दो प्रकार के लोगों में ऐश्वर्य कैसा कैसा होता है। अर्थात वो दक्ष को कह रही थी कि आपको अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड है और आप सोचते शिव जी के पास ऐश्वर्य नहीं है, तो कौन सा ऐश्वर्य शिव जी के पास है, इसका वर्णन वो आगे आने वाली शिक्षाओं में करेंगे, जिसको हम लोग अगले रविवार को सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई शंका है? हाँ, प्रश्न यह है कि अगर अनजाने में कोई अपराध हो जाए, जानबूझ के किया वो तो ठीक है, हमें पता है, अनजाने में अपराध हो जाए तो उसका क्या उपाय है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जानबूझ के तो हम लोग रोज ही करते रहते हैं, अनजाने में कितना करते हैं पता नहीं है, बहुत सारे होते होंगे अनजाने में उपाय। तो अनजाने में किए गए उपाय, अगर हमें पता है कि अनजाने में किसी व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया, एक उसमें भी दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली कि हमें पता है कि हमारी इच्छा नहीं थी लेकिन गलती से उस व्यक्ति के प्रति अपराध हो गए, बाद में हमें पता चले, एक स्थिति। दूसरी, हमें पता ही नहीं चले, अपने काम में व्यस्त है, हमने किसी का कर दिया। तो दो स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति जहां हमें थोड़े समय बाद ये पता चले कि अरे रे, हमने उसके प्रति अपराध कर दिया, हमारी इच्छा नहीं थी, हमारी ऐसी भावना नहीं थी लेकिन गलती से हो गया, तब क्या करना है? उससे क्षमा मांगनी चाहिए। एक ही उपाय है, जब हम किसी के प्रति अपराध करते हैं, खास करके अगर वो भक्त हैं, तो दो कार्य से हम उसके उस अपराध से बच सकते हैं। पहला, उनसे क्षमा मांगना, दूसरा बिना बताए उनकी सेवा करना, जो कि कष्टदायक होता है। हम किसी की निंदा कर देते, किसी के अपराध करें और उसी की सेवा करना जाकर, ये तो बहुत कष्टदायक, क्या बोलते हैं, अहंकार चूर चूर हो जाता है, लेकिन वो आवश्यक है। तो क्षमा मांग लेना और या तो उनकी सेवा करना, क्योंकि अगर वो भक्त हैं तो निश्चित वो क्षमा करेंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया अम्बरीश महाराज का, दुर्वासा मुनि उनके पास आए, उन्होंने कहा आपने कोई अपराध नहीं किया। श्रीवास ठाकुर के पास गोपाल चपल आए, उन्होंने कहा नहीं आपने कोई अपराध नहीं किया। क्योंकि भक्त हमेशा उसको अपने कर्मों का फल मानते हैं, कोई आकर अपमान कर गया, कुछ कर गया, अपराध कर गया, मेरे कर्मों का फल है। तो इसीलिए गलती से हो जाए तो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसी अवस्था है कि हमें पता ही नहीं है, अनजाने में हम करे जा रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, हमें नहीं पता, तो ऐसी स्थिति के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थितियों के लिए गृहस्थ जीवन में विशेष करके पांच प्रकार के अपराध बताए गए हैं, जो साधारणतः हम लोग रोज करते हैं। जैसे पानी गर्म करते हुए बहुत सारे कीड़ों को मार देते हैं, सांस लेते हुए कीड़ों को मार देते हैं, झाड़ू लगाते हुए कीड़ों को मार देते हैं, ऐसे कई अपराध हैं। तो उसके लिए उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में दो प्रकार के। पहला, जो व्यक्ति को रोज करने चाहिए, जैसे अतिथि की सेवा करना, अन्य जीवों के प्रति दया का भाव दिखलाना, सभी जीवों के प्रति। और दूसरा ये बतलाया गया है कि जीवन के अंत में कुछ ऐसे विधि बताई गई हैं जिनको करने से जो भी जीवन में हमने जाने अनजाने में पाप कर दिए हैं उनका प्रायश्चित हो सकता है। तो ऐसी कुछ विधियां शास्त्र में वर्णित हैं। लेकिन इन सब के परे एक विधि है जिसको बहुत शक्तिशाली माना गया है, और वो है भगवान का नाम। अगर हम भगवान का नाम सही भाव में लेते हैं तो निश्चित है कि जो भी पाप हमसे हुए हैं और होते ही हैं, तो उन पापों का निवारण हो जाता है। लेकिन वो कौन से पाप? जो अनजाने में किए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाम लूंगा पाप करूंगा, नाम लूंगा पाप करूंगा, वो पाप नहीं जाता। अनजाने में जो हो गए, भगवान का नाम लेकर हम उस पाप से दूर आ सकते हैं। तो ये तीन उपाय हैं। एक, जो कर्मकांड की दृष्टि से बताए गए कुछ यज्ञ हैं। दूसरे, हम उस व्यक्ति से, उन लोगों से क्षमा मांगें और उनकी कोई सेवा करें। और तीसरा, हम भगवान के नाम को बड़ी गंभीरता से, इनसे निश्चित जितने पाप हैं, ऐसा वर्णन पद्म पुराण में किया गया है कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति के कई जन्मों के जितने पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। तो बड़ा सरल उपाय, नाम लो। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? कुछ पूछना चाहते हैं? प्रश्न ऐसा है प्रभु जी का कि सिर्फ हरे कृष्ण बोलना चाहिए या कोई भी नाम ले सकते हैं? कोई भी नाम ले सकते हैं भगवान का, कोई गलती नहीं है, क्योंकि सब भगवान के नाम है। हाँ, भगवान का होना चाहिए, कोई हमारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, ओम अतुल कृष्ण आय नमः नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बनाया हुआ नहीं, भगवान का। नहीं तो हम कह सकते हमारे नाम में भी कृष्ण है ना, तो कल से ओम अतुल कृष्ण आय नमः चालू कीजिए जपा, बनाया नहीं, जो शास्त्र में कहा है। तो शास्त्र क्या कहता है, भगवान के सारे नाम शक्तिशाली है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं इस नाम में। तो जैसे हम दवाई की दुकान में जाते हैं तो आप क्या देखते हो, बहुत सारी दवाइयां हैं और सब दवाई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सरदर्द हुआ है और मुझे केवल सेरिडॉन चाहिए, वही दवाई है, बाकी सब बेकार है। नहीं, सब दवाइयां हैं, लेकिन आपके लिए केवल सेरिडॉन। अगर आप ब्लड प्रेशर की ले लोगे तो मर जाओगे क्योंकि ब्लड प्रेशर नहीं है आप। इसी तरह सारे मंत्र में शक्ति है, सारे नामों में शक्ति है, लेकिन इस कलयुग में हमारी जो बीमारी है उसके लिए इन सारे मंत्रों में से एक मंत्र दिया है और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इसका वर्णन कली संतरण उपनिषद में किया गया। एक उपनिषद है जिसमें ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं इस मंत्र को दिया है और कहा है कि कलयुग में, इस कलयुग में इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कली में केवल एक ही कार्य करेगा। बाकी सारे मंत्र हैं, बाकी सारे शक्तिशाली हैं, नाम ले सकते हैं, हम लोग भी कभी कभी लेते हैं, जब भागवत शुरू करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भी मंत्र है, लेकिन हमारी बीमारी ठीक करने के लिए केवल महामंत्र। तो इनके प्रश्न का उत्तर एक, ये सबसे पहले अगर लेना है तो केवल भगवान का नाम लेना चाहिए, बाकी कोई नाम हमें उद्धार नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, कभी कभी लोग पूछते हैं, और बहुत सारे नाम हैं भगवान के छोड़ के, क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि वो सब भौतिक स्तर पर है। जैसे समझ लीजिए सब जेल में हैं, तो सारे जेल में रहने वाले आपको जेल के बाहर नहीं ले जा सकते, जेल के बाहर जाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद बाहर है। हाँ, अगर वही जेल में है वो कैसे ले जाएगा बाहर आपको। तो इसी तरह ये जो भौतिक जगत है ये जेल के समान है, इसके अंदर जो भी हैं, फिर वो इंद्र हो वरुण हो जो भी हो, जो इसके अंदर है वो बाहर नहीं ले जा सकते, उसके लिए किसी को बाहर से आना पड़ता है, और इस जगत के बाहर केवल भगवान है। तो इसलिए नाम केवल भगवान का होना चाहिए, और भगवान के नामों में भी इस समय के लिए। अब आप कहेंगे कि सारे भगवान के नाम है, हम क्यों नहीं दूसरा लें, क्यों केवल हरे कृष्ण कहें? तो क्योंकि जो समय होता है युग, ये ऋतुओं के समान है। अभी जैसे बारिश है, आप बारिश में छाता लेकर चलते हैं, ठंडी आती है तो आप स्वेटर पहनते हैं, गर्मी आती है तो खैर जो भी करते होंगे, तो आप हर समय के लिए अलग अलग तरह से आचरण करते हैं। इसी तरह हर युग के लिए अलग अलग नियम है, और इस युग के लिए एक ही नियम है कि हम इस महामंत्र का जप करें। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? यस, यस, बहुत अच्छा है कलयुग का प्रश्न प्रभु जी का। प्रभु जी बोल रहे हैं कि दो प्रकार की पूजा होती है, मानस पूजा और दैहिक पूजा, अर्थात जो हम अपने शरीर से इससे करते हैं। तो आजकल तो समय नहीं है लोगों के पास, तो मानस पूजा किया तो चलेगा क्या? एक आपको छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं और फिर बताएंगे। चैतन्य लीला में यह हुआ था, एक भक्त थे, बहुत इच्छा थी उनकी भगवान को, बड़ा आलिशान मंदिर भोग लगाने की, एक पैसा नहीं था उनके पास, एक रुपया नहीं, इच्छा थी भगवान को बड़ा आलिशान भोग लगना चाहिए, बड़ा मंदिर होना, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। तो एक दिन उन्होंने आंखें बंद की और मन में उन्होंने आरंभ की सेवा, भगवान की पूजा। तो भगवान को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए उन्होंने, मन में चल रहा है, कुछ भी नहीं है बाहर, न भगवान है न मूर्ति है न मंदिर है, और उन्होंने सब बड़े अच्छे उनको कपड़े पहनाए, बड़े अच्छे गहने सोने के गहने पहनाए भगवान को, बड़ा ऐश्वर्यशाली। अब भोग लगाने का समय आया, क्योंकि नियम यह है कि जब भगवान के विग्रह के श्रृंगार किया जाता है उसके बाद भोग लगता है भगवान को, और भोग के बाद आरती होती है। तो भोग लगाने का समय आया तो भोग में भी इनकी इच्छा थी बड़ा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें मन में ही सोच रहे हैं कि अभी हाँ अब लड्डू आ रहे हैं, अब ये आ रहा है, वो आ रहा है। आप लोग भी सोचते हैं ना ऐसे, जब लेक्चर लेट हो जाता है तो आपके मन में भी पुलाव आ रहा है, वो आ रहा है, जो भी है सब उधर चला जाता है। तो वो भी सोचने लगे अब ये आ रहा है, लड्डू आ रहे हैं। फिर उन्होंने खीर बनाई भगवान के लिए, बहुत बढ़िया। तो अब उनको लगा कि अरे अरे खीर तो आ गई, कहीं गर्म तो नहीं है, भगवान को भोग लगाने के पहले देखूं। तो उन्होंने अपनी उंगली ऐसे डाली खीर में, आपने पहले ही बताया कुछ है नहीं, वो मन में है, खीर में उंगली डाली लेकिन खीर बहुत गर्म थी, एकदम जल गई। और उन्होंने ऐसे जब हाथ किया तो उनका ध्यान टूट गया, और वहां चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि सही में उनकी उंगली जल गई थी, न खीर थी न भगवान थे न कुछ, लेकिन उंगली जल गई थी। ये मानस पूजा है। ऐसी मानस पूजा का बहुत जगह वर्णन है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव जेल में थे, और आप जानते हैं कि जो राजा हुआ करते थे जब पुत्र का जन्म होता था तो कितनी सारी वो दान दिया करते थे। तो भागवत में वर्णन है कि उन्होंने लाखों गाय दान में दी वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के जन्म पर। कहां से दी? खुद तो जेल में बंधे बैठे थे, मन में उन्होंने मन में दान दी। और वर्णन है कि सब सोना, उनके सींग पर सोना लगा था, ऐसे उन्होंने मन में दान दिया। तो ये मानस पूजा कहलाती है, जो प्रामाणिक है और की जा सकती है। और दूसरी होती दैहिक, जैसे हम लोग यहां पर आकर भगवान को एक्चुअली भोग लगाएं, केवल मन में नहीं, भगवान भी कितना समय मन में खाएंगे। जैसे आपको अपने पुत्र को कुछ खिलाना है तो आप बैठ जाओ, या माता जी आपके घर में बैठ जाएं कि हाँ ठीक है अभी पूरी आ रही है, मेरे पुत्र ने पूरी खा ली, अभी खीर आ रही है, मेरे पुत्र ने खीर खा ली। और ये सब पूछने के बाद पुत्र को पूछे पेट भर गया, पूछ बोले क्या पेट भर गया, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ क्या हुआ। तो लेकिन फिर भी भगवान मानसिक, पुत्र एक्सेप्ट करेगा नहीं, भगवान मानसिक पूजा एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन कब? जब भक्त का भाव उतना तीव्र हो, जब भक्त के लिए ऐसी स्थिति ना हो जहां वो कर सके। लेकिन अगर इसलिए कि हमारे पास समय नहीं है, उस पूजा को स्वीकार नहीं कर सकते भगवान, क्योंकि आप भगवान को समय नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं बाइक चलाते चलाते मानस पूजा कर रहा हूं आपकी। मान लीजिए आप गाड़ी में चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते हॉर्न मारते मारते आप शंख बजाने की जगह हॉर्न मार रहे हैं, पीप पीप पीप, तीन शंख हो गए, फिर आगे चल रहे हैं। तो ये पूजा को भगवान आप बताइए स्वीकार करेंगे? ऐसी पूजा नहीं करेंगे। मानस पूजा निश्चित स्वीकार करते हैं भगवान, ये तो प्रमाण है शास्त्र में। लेकिन ये नहीं कि शंख की जगह आप हॉर्न बजाएं और अगरबत्ती जलाने की जगह सिगरेट पीकर उसको करें, जो तो ये सब चीजें तो भगवान मानस पूजा ऐसी स्वीकार। तो अगर व्यक्ति केवल इसलिए करता है कि मेरे पास समय नहीं है भगवान के लिए, मैं चलते चलते कुछ करूं, वो ठीक नहीं। हाँ, उसकी इच्छा बहुत है, तीव्र इच्छा है, लेकिन फिर भी स्थितियों के कारण वो नहीं कर पा रहा, मंदिर नहीं जा पा रहा, तब ठीक है, तब वो मानस पूजा करे, उसको भगवान स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, बाहरी चीजें नहीं। आपने पैंट शर्ट पहनी है, हमने धोती कुर्ता सैफरन पहना है, इससे हम भक्त हो गए, ये प्रमाण नहीं है। भगवान बाहरी चीजें नहीं देखते। अभी हम लोगों ने सती देवी की शिक्षाओं में पढ़ा ना, बाहरी चीजें नहीं देखनी चाहिए। तो भगवान भाव देखते हैं, इसलिए मानस पूजा भी सही है, प्रामाणिक है, शास्त्रों में प्रमाण है कि लोगों ने मन के द्वारा पूजा की है। लेकिन उन लोगों का स्तर वो थे कि जहां वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित थे, इसलिए नहीं कि मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं। फिर भगवान भी कह देंगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, फिर तुम भी बैठे रहो जितने समय वहां पर। ये सब हम कब तक कह सकते हैं समय नहीं है? जब तक मृत्यु नहीं आती। यमराज को नहीं कह सकते, यमराज जब लेने के लिए आएंगे तब आप नहीं कहेंगे बिल्कुल समय नहीं है, अभी मुझे और बहुत कुछ करना है, दो फैक्ट्रियां बनानी है, तीन बिल्डिंग बनानी है। यमराज बोलेंगे चल लेकर चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें समय निकालना चाहिए। लेकिन हाँ, आपका जो प्रश्न था कि अगर ऐसी स्थिति हो जहां नहीं कर सकता व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति बीमार है, चल के नहीं आ सकता मंदिर, तो क्या भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे? सेवा स्वीकार करेंगे भगवान। मान लीजिए उसके शरीर में ऐसी तकलीफ है कि वो उठकर भगवान को आरती नहीं दे सकता, तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में भगवान करते हैं, लेकिन वैसी इमरजेंसी रोज नहीं होनी चाहिए। यस, और कोई प्रश्न किसी का? तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले रविवार को चर्चा आगे, सती देवी की बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं, उनको आगे हम लोग जारी रखेंगे। अभी कुछ सूचनाएं होंगी और फिर आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा ले लेना।